हरे कृष्णा ब्रह्मचारी क्लास एट मीरा रोड इस्कॉन टेम्पल बाय हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु जी।
हर रोज एक कीर्तन माना जाता है इसको, यानी मंगल आरती से पहले इसको गाया जाता है। मंगल आरती से पहले जाने वाले जो कीर्तन है दो तीन भजन इसके अंदर है। सब भक्त लोग मंगल आरती से पहले जब भगवान का भोग लगता है, मंगल भोग लगता है, वो टाइम में सब लोग बैठ के इसको बैठ के गाने वाला कीर्तन है। उदिल अरुण पूरब भागे, पूरब दिशा में क्या हो रहा है, अरुण, अरुण मतलब सूर्य का उदय हो रहा है। द्विजमणि, चैतन्य महाप्रभु को द्विजमणि कहा गया है, सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। मणि मतलब श्रेष्ठ होता है, द्विजों में श्रेष्ठ है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और सारे ब्राह्मण को मानते थे।
द्विजमणि
दोहरा आमानी जागे, तो क्या कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं जागो जागो। भक्त समूह, वो अकेले ही जा रहे हैं, पूरा नदिया में घूम घूम के कैसे से जा रहे हैं। भक्त समूह लहिरा साथे, लहिरा साथे मतलब उनको साथ में लेके, भक्तों के समूह में लेके। गेल नागर ब्राचे, गेला मतलब निकल रहे, कहाँ जा रहे हैं, पूरा नगर में, घर घर गाँव घूम। पहले ऐसे गांव में हुआ करता था, सुबह के टाइम में सबको जगाने के लिए नगर संकीर्तन जैसा हुआ करता था। श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है, भागवतम में कहा गया है, माया मृगम दैत्यप्सितम मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो माया के पीछे भागने वाले जो होते ना, उनके पीछे चैतन्य महाप्रभु भागते हैं। जो जितना नहीं बोलता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कृष्ण भक्ति उसको भी उसको पकड़ते हैं। जितना लोग बोलते हैं क्या भक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति नहीं चाहिए, जितना माया के पीछे जितना भागने वाले होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु कृपा रहता है। और सुबह सुबह सबको जाके उठाना, ये चैतन्य महाप्रभु का रोज़ का कार्य था, उनका दिनचर्या था। चैतन्य महाप्रभु का दिनचर्या का वर्णन करते हुए भक्तिनोद ठाकुर और एक भजन लिखते हैं, गौरंग स्मरण मंगल स्तोत्रम, बहुत सुंदर स्तोत्र है। चैतन्य महाप्रभु कौन से टाइम में क्या क्या लीलाएँ करते हैं का वर्णन करने वाला बहुत सारे स्तोत्र है, उसमें एक चैतन्य महाप्रभु का स्मरण मंगल स्तोत्र। तो ऐसा जो 24 घंटा होता है, 24 घंटा में कृष्ण राधा कृष्ण ने कौन सा लीला किया, वो अष्टकाल लीला माना जाता है। वैसे चैतन्य महाप्रभु भी अष्टकाल लीला क्या कर देते हैं, वो भी उसका भी वर्णन है, ये सुबह का संक्षिप्त में सुबह का वर्णन। तो जब चाय करते साथ साथ में क्या मृदंग भी जिके जाते हैं, थातय थातय भजय खोल, जो खोल मतलब मृदंग, असल तो उसको खोल है, हम लोग बजाते हैं ये मृदंग नहीं है, खोल है,
खोल है।
ये बांग्ला में ये एक्चुअली खोल है, जो साउथ में मिलता है उसको मृदंग बोलते हैं। मृदंग का जो है ना ये बहुत बड़ा रहता है और ये थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा रहता है, साइड वाला जो है ना बड़ा रहता है, मृदंगम उसको बोलते हैं। मृदंगम अलग है, खोल अलग है, ये एक्चुअली इज नॉट मृदंग, एक्चुअली बोलना चाहिए खोल, खोल करता ऐसे बोलते थे, कोल करताल, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम कोल है। हम लोग मृदंग जैसा दिखता है इसलिए हम लोग मृदंग बोलना शुरू किया, लेकिन इसका नाम कोल। साउथ में जाओ जो मिलता है ना ऐसी वाला, वो उसको मृदंग बोल जाते। थातय थातय भजय खोला, धन दहा कहा कि अंझर रोला, जो करताल कैसे बचता था, हाँ धन धन ताहे, हाँ घना घना ताहे झाजेरा, झाजेर मतलब झाजेर क्या, झाजेर हाँ झाजेर, हाँ वो बोल है, वो प्रेम डला सोनारांगा। जब चैतन्य महाप्रभु नाचते थे म्यूजिक के अनुसार, ये जो मृदंग बजता था, तो प्रेम ढला ढला सोनारांगा, चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है वो सोने के वर्ण का था, तो वो जब उनके अंग जो है सोने का अंग है, हाँ सोनारांग एकदम चमकता था। और चरण नूपुर भाजे, तो चैतन्य महाप्रभु नाच रहे तो क्या है? चरण में उनको नूपुर नूपुर होगा, तो स्त्री लोग भी पहनते थे और पुरुष लोग पहनते थे, स्त्री लोग पुरुष लोग मोटा मोटा पहनते थे, स्त्री लोग जो है एकदम पतला सा पहनते थे, तो ये वैदिक कल्चर था। और मुकुंद माधव यादव हरी बोले ने बोल रे वदन भरी, तो सबको क्या बोलते थे, मुकुंद माधव सब लोग बोलो बोलो, ऐसा सबको उत्साह देते, उठो उठो उठ के बोलो भी, बहुत हो गया। मिचे निदा वशे गेलोरे राती, हे अभी रात गया है, गेलोरे राती रात जो है खत्म हो गया, अभी उठो नींद छोड़ो, ये जो तुम लोग क्या करते हो, रात भर सोते रहते हो और दिन में क्या करते हो, दिवस शरीर साज है, इस प्रकार पूरा तुम्हारा जीवन निकल रहा है। ये मनो दुर्लभ मानव देह, तुम्हारा आज जो मानव देह है बहुत दुर्लभ। प्रहलाद महाराज कौन सा श्लोक है प्रभु जी, भगवान कहते हैं दुर्लभ। हाँ, पहला श्लोक कौन सा है, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान हाँ दुर्लभम मानुषम देव तद्यपि अध्रुवम अर्थदम, अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज क्या बोलते, देखो दुर्लभम मानुष जो है दुर्लभ है, जैसे आपको बहुत श्लोक आता है इसलिए मैंने पूछा, लोगों को याद करने कंपटीशन में आप आगे बढ़ गए, सुना ऐसा सुनने में आया। ये रोज लिखते आप ही लिखते हो, वेरी गुड, श्लोकों को याद करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये दुर्लभ मानुष देव जो है वो उसका दो स्वभाव है, वैसे दुर्लभ है ये, दुर्लभता से प्राप्त हो लेगी, उसका दो स्वभाव है। कोई कहे हाँ अध्रुवम, दुर्लभ सा से मिला रहा, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, बाद में करेंगे भक्ति, बाद में करेंगे। महाराज कहे, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, अध्रुवम कब मरने वाला है, अभी कोई कहे मरना ही है, चलो बाद में देखेंगे, कैसे मरना ही है एक दिन तो नहीं, अर्थदम, अर्थदम मतलब ये आपको, ये आपका जीवन का जो सिद्धि है, मनुष्य जीवन का सिद्धि है वो प्रदान करने वाला है। इसलिए ये जो शब्द मनुष्य देव के पीछे दुर्लभ बहुत बहुत जगह प्राप्त होता है, इसलिए यमन दुर्लभ मानव देह पाइया की करो भावना के हाँ, ये जो पाइया की करो मतलब क्या है, एक बार प्राप्त हुआ तो क्या कर रहे हो इसके साथ, देखो भवना के हा ये बेना भजिले, अगर अभी नहीं भजोगे, यशोदा सूता भगवान कृष्ण को यशोदा उनको पूछम भजोग नहीं करोगे, चरमे पोड़ी बे लाचा, तो क्या होगा, चरम मतलब अंत में लज्जित हो जाओगे, तुम्हारा कोई शरीर काम का नहीं रहेगा, इसलिए अभी समय है, उठो, उठ के भजन करो। उदित तापर होइले अस्त दिन गेलो बोली होइबे व्यस्त, उदित तापन होइलो अस्त, सूर्य के उगने सूर्य के उगने तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यर्थ की व्यस्तता में बीत जाता है। हाँ हाँ, उदितो तापन होइलो अस्त, सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है। भागवतम में कौन सा श्लोक है प्रभु जी, कहा गया है हमारा आयुष हर हर लेता है सूर्य, आयु हरति वै पुंसान धन्य स्तम जन्न सोणी का उत्तम श्लोक। तो दिन गेला बोली होई बे व्यस्ता, पूरा दिन चले जाता है, मैं व्यस्ता, वो काम तो ये काम किया, वो काम किया, पूरा व्यस्तता में चले जाता है। तबे कोनो एवे आई आलस होई, इसलिए आप आलस मत करो, ना भजे हृदय राजे, जीवन अनित्य जना सा, क्या बोलते हृदय का राजा भगवान जो है, हृदय का ना भज रहे हृदय राजे, हृदय राजे हृदय का राजा है। जीवन अनित्य जाना सार, ये जानो जीवन जो है अनित्य है, और ताहे नाना विधा विपद भाग, और साथ साथ में अनित्य होने पर भी अब छोड़ता नहीं है, ऐसा नहीं अनित्य है, अनित्य है दुखालय में है, और साथ साथ में अशाश्वत भी, अशाश्वत होने के साथ साथ दुख को ताहे नाना विधा विपद भाग, नामाश्रय करी, इसलिए क्या कर क्या प्रार्थना कर क्या बोलते हैं, नाम का आश्रय लो, नामाश्रय करी यदा न तुम्हें प्रयत्न करो ताकह आपना काज, अब जो काम करे करते रहो लेकिन क्या करो, नाम का आश्रय। तो सुबह भागवतम क्लास के क्लास दे रहा था, तो भागवतम क्लास में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वही उद्यन्यस्तम चन्यसो उसके आगे वाला श्लोक है, उसके आगे के दो पद, दो तीन श्लोक के आगे वाला श्लोक है। बाराह परम भट्ट किरीटदृष्टम अप्युत्तमांगम नरवेत्तुकम मुकुंदम शावो करो नो शुकृते सपर्याम हरे लसत कंकड़ कंचन हुआ। भागवतम का दूसरा स्कंद का तीसरा अध्याय का 21वां श्लोक है। तो ये श्लोक में कहा गया है हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, भारा बाराह परम पट्ट किरीट चित्र, सब लोग मुकुट धारण किए, राजा मुकुट धारण करता है ना, पगड़ी धारण करता है, राजा ही नहीं सब लोग धारण किए, लेकिन आजकल है नहीं, पहले सब लोग धारण करते थे मुकुट पगड़ी, हमारे पास अभी नहीं है लेकिन फिर भी वो है, पोस्ट है ना, ये पोस्ट जो है वो मुकुट माना जाता है, ऐसा नहीं कि जिसको पोस्ट है वही पोस्ट है, सबके पास कोई ना कोई पोस्ट है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का माँ है, किसी का कोई बच्चा है, कोई किसी का वो है, किसी का वो है, सबके पास कुछ ना कुछ रहता है ना जिम्मेदारी पोस्ट, तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन नरमेत मुकुंदम भारा, अगर भगवान के सामने उत्तमांग मतलब सर को झुकाता नहीं है, भगवान के मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम नहीं करता है, ये जो जिम्मेदारी जो है ना वो भार, आप कोई बोट में जा रहे हो बहुत भारी हो गई तो क्या होगा, डूब जाएगा, ये जिम्मेदारी कोई भी जिम्मेदारी क्यों ना हो वो किसे किसके बराबर है, वो भार के बराबर है, तो जिम्मेदारी कहाँ लेके जाएगा आपको, डुबा देगा संसार के सागर में डुबा देगा, मैं उसका ये है उसका ये, जितने भी संबंध हैं वो संबंध के अनुसार जिम्मेदारी तो होता ही है कि नहीं, मान लो किसी ने माना कि मैं उसका चाचा हूँ, चाचा बनने का जिम्मेदारी है ना, किसी ने बोला कि मैं प्रेसिडेंट हूँ तो प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी है कि नहीं, कोई बोलेगा नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, कोई बोलेगा मैं माँ हूँ तो माँ का जिम्मेदारी है, कोई बोलेगा कि मैं दुकानदार हूँ, दुकानदारी करने की जिम्मेदारी है, कोई बोलेगा मैं नौकर हूँ, नौकरी करने की जिम्मेदारी है, तो सबका कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन अगर वो भगवान का शरण नहीं लेता है वही जिम्मेदारी उसको डुबा देता है, अगर भगवान का शरण लेता है वही जिम्मेदारी उसको उद्धार करता है, कोई जिम्मेदारी उसको उद्धार करता है। आपका क्या जिम्मेदारी है, टॉयलेट साफ करना है कि नहीं, अगर भगवान का शरण लोगे तो क्या होगा, वो टॉयलेट साफ करना आपको उद्धार कर देगा, शरण नहीं लोगे तो क्या होगा, कोई जिम्मेदारी है पता नहीं क्या करना है, मेरा जिम्मेदारी है, मेरा इतना सेवा है, करते करते वही आपको डुबा देगा। तो ये जो जिम्मेदारी जो चीज़ है वो कैसे निभाना चाहिए, भगवान का शरण लेते हुए निभाना चाहिए, यू शुड टेक इट आउट ऑफ टेकिंग शेल्टर। अगर शरण के बिना अगर कोई जिम्मेदारी स्वीकार करता है, पदवी स्वीकार करता है, पोस्ट स्वीकार करता है, वही पोस्ट जो है उसको डुबाने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जीवर कल्याण साधना काम जगत आसिए मधुर नाम जीवों का कल्याण करने के लिए ही यह मधुर नाम जगत में प्रकट हुआ है। जगत आसिया मधुर नाम, इस जगत में मधुर नाम आया है, क्यों, जीवों को कल्याण करने के लिए। और आगे कहा गया है प्रकट हुआ है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से पूर्ण हृदय रूपी आकांक्षाओं में सूर्य की भांति उदित होकर, क्या देखो, अविद्या तिमिरांग तपन रूपे, अविद्या तिमिरा, अविद्या मतलब अज्ञान, अज्ञान अंधकार के बराबर है, जो ये अंधकार है उसको नाश करने वाला क्या है, वो तपन रूप है, एक प्रकाश के रूप में है, हृदय गगने विराजे, क्या सुंदर उपमा देते हैं, हृदय को आकाश के बराबर तुलना किया, आकाश में क्या होता है, सूर्य उदय नहीं होता तो अंधकार रहता है, जैसे हृदय नामक आकाश में ये जो नाम है किस रूप में प्रकट हुआ है, एक सूर्य के जैसा है ताकि सारे अंधकार को निकाले। कृष्ण नाम सुधा करियापान, कृष्ण नाम का जो सुधा अमृत है आप सब लोग उसको पियो, జుడావు భక్తి వినోద ప్రాణ్ జుడావు భక్తి వినోద ప్రాణ్ క్యా కర జుడావు మతలబ్ క్యా హా ఠండా కరో ఠండా మతలబ్
తాపా హువా మనే
తాపా హువా దుఖీ జో దో క్యో జీరో టాక రహా జుడావు భక్తి వినోద ప్రాణ్ నానా నామ బినా కిచ్చు నహీ కిచ్చు నహీ కార్ నామ కే బినా కుచ్ భీ నహీ హై సంసార్ మే 14 భువన మాజీ नाम का महिमा को इस बड़े सुंदर भजन में आपको मालूम है ना इस्कॉन इस्कॉन में चार डिग्रीज है 4 डिग्रीज भक्ति शास्त्री उसके बाद क्या है हाँ याद है वाह बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको याद रहा कुछ तो याद है जी भक्ति साहब दे देना चाहिए आपको
तो जाके है ना भक्ति शास्त्री
भक्ति शास्त्री कौन कौन नहीं किया भक्ति शास्त्री
जरूरी करना पड़ेगा
आप किया ना नहीं किया आधा क्यों हुआ अच्छा डिग्री तो मिली है ना पेपर तो चलिए भक्ति शास्त्री के बाद क्या है भक्ति शास्त्री में चार किताब पढ़ाया जाता है वैसे भक्ति अपना इसमें में चार कौन सा है भगवद गीता भगवद गीता तो अस्तित्व में देखा जाए भक्ति शास्त्री में बहुत सारा था फिर भक्ति चंद सागर भक्ति शास्त्री का सिलेबस देखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं करना चलो अच्छा है उसके बाद भक्ति वैभव उसमें भागवतम पढ़ाया जाता है भक्ति वेदांत में वेदांत सूत्र पढ़ाया जाता है जनरली अभी तो भागवतम का 10वां स्कंद बोलते हैं ऐसा लेकिन भक्ति सार्वभौम जो है ना वो चैतन्य चरितामृत ऐसे बोलते हैं लेकिन अस्तित्व में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हाँ था भक्ति सार्वभौम जो टॉप मोस्ट डिग्री होता है ना उसका सिलेबस क्या है वैष्णव भजन वैष्णव भजन यानी वेदांत सूत्रों को पढ़ने के बाद उसके बाद का जो पी ए श्री मानो ये भजन इसके अंदर भजन और हरे कृष्ण महामंत्र में अंतर क्या है आप जितना वैष्णव आचार्य का भजन गाओगे उसके दो फायदा है हरे कृष्ण महामंत्र में दो चीज़ें जो नहीं है उसके अंदर है हरे कृष्ण मंत्र में क्या है कि आप मंत्र करोगे तो अपराध का होने का चांस रहता है लेकिन वैष्णव भजन में अपराध का कोई चांस नहीं नो चांस देयर इज नो अपराध आपने नाम अपराध सुना लेकिन भजन अपराध सुना है ये शब्द सुना है कभी नहीं सुना है और एक विशेषता क्या मालूम है हरे कृष्ण मंत्र जब करोगे भगवान की कृपा मिलेगा लेकिन भजन गाओगे तो क्या मिलेगा वैष्णव कृपा मिलेगा आचार्य कृपा मिलेगा और जितना आचार्य कृपा मिलेगा उतना भगवान की कृपा मिलेगा और जितना भगवान की कृपा मिलेगा आपका हरे कृष्ण मंत्र उतना अच्छा हो सकता है इसलिए हर एक व्यक्ति को वैष्णव भजन जो है बंगला भजन है संस्कृत के जो स्तोत्र है रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ स्तव माला है स्तवामृत लहरी है वो अपना विश्वनाथ श्री ठाकुर का और गीतावली है विक्रम ठाकुर का अनेकों अनेकों ऐसे ऐसे बहुत सारे भजन हैं संस्कृत हो बंगला हो या अपने अपने जो अलग अलग भाषाओं में ये भजन बहुत महत्वपूर्ण है स्तोत्र हैं स्तव है इवन भागवत के भी स्तव है ना कुंती महारानी का स्तव है भीष्म स्तुति है ये सब बहुत महत्वपूर्ण है आप ये मत सोचो कि हरे कृष्ण मंत्र करेंगे लेकिन वो अच्छा करने के लिए ये स्तव करना है भजन गाना बहुत ज़रूरी है जैसे ये भजन गाया आपने ये भजन गाने के द्वारा भक्तिनो ठाकुर कृपा हमको प्राप्त होता है क्योंकि आचार्य ने क्या किया अपने कृपा को इन भजनों में रख के गए अपना उनका कृपा जो है वैष्णव कृपा जो है इन भजन में रखा हुआ है और जितना इस भजन को गाओगे उतना आपका सरल होगा मन क्या भजन है सरला कोरिया मन भजन है सरला कोरिया मन
कौन सा इसमें आता
है?
सरल है मन, सरल हो मन ये लगे और एक भी है।
हाँ 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 मिता चैतन्य नाचे
मान मान ऐसा ऐसा वो कुछ भजन है। मन को सरल कब होगा ये? ये भजन गाएंगे क्योंकि सबका मन जो है, हृदय जो है बहुत कठोर है। कठोरता की वजह से अपराध होता है। हम वैष्णवों को आदर से नहीं देखते हैं, दूसरों का निंदा करना और अपने आप को बहुत बड़ा मानना, ये सब जो है ये हृदय कठिन कठोर हृदय के बराबर है। हमारा हृदय जो है पत्थर के बराबर है। उसकी वजह से जो मधुर मधुर नाम है उसका आस्वादन नहीं होता है। तो नाम जप करने के बाद हमारा हृदय सरल नहीं होगा। कैसे सरल होगा? जब ये भजन गाएंगे, यानी वो सिंग इज भजन। जितना भजन गाओगे आचार्यों का उतना हृदय सरल होगा। ऐसा कहा गया है कि ये भजन गाने से पत्थर भी पिघल जाता है, इवन हाँ स्टोन मेल्ट्स। हाँ चैतन्य भागवत जो है ये भी प्रकार का भजन ही समझ लो। चैतन्य भागवत श्लोक है भजन जैसा ही है। अगर जो चैतन्य भागवत पढ़ता है ऐसा कहा गया है वो मुसलमान को भी आंखों में आंसू आ जाता है। मुसलमान जिसका हृदय बहुत कठोर होता है, गाय को मार देता है, वैसे व्यक्ति जो है वो भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। तो ये भजन में इतनी क्षमता है। आप खासकर गौड़ी मठ जाएंगे कभी कभी आप देखो एक बक अकेला बैठा रहेगा, करताल लेके बैठा रहेगा, अकेला भजन गाता रहेगा, घंटों घंटों गाता रहेगा। हाँ ऐसा कि नहीं, घंटों घंटों गाता रहेगा। अपना सेवा जो भी करना कर लिया, एक जगह बैठ गया और भजन लेके भजन गाता रहेगा, करता लिया नहीं तो करता नहीं तो भी ऐसे गाता रहता है। मैं पहली बार जगन्नाथपुरी गया था, मैं गौड़िया मठ में था, दस दिन रुका मैं पूरी महाराज थे उस समय। तो आई तोटा में है ना आप मान लो, आई तोटा जगन्नाथपुरी में आई तोटा गए कि नहीं?
तोटा गोपीनाथ के बाद ही
नहीं नहीं आए तोटा, वो गुंडीचा के बाजू में, हाँ पूरी महाराज का मठ है। माधव महाराज है ना उनका नाम, जो इधर आते थे कभी कभी मोटे से, वो उधर भी रहते थे, विष्णु महाराज के साथ पे थे बाद में। तो वो मठ में था मैं दस दिन रुका, गोविंद महाराज, गोविंद वो पूजा करते हो, तो वो मठ में था उनके साथ। तो मैंने देखा अपना सेवा किया, जिस जिसका कुछ सेवा रहता है, मानो किसी का कुकिंग का सेवा कुकिंग किया, किसी का पूजा का सेवा। उधर के कुछ लोग थे, मैं देखा एक ऐसा चुपचाप जाएंगे एक जगह बैठ जाएंगे और गाते रहेंगे। वो टाइम मुझे बंगला इतना ये नहीं था, नहीं मुझे अच्छा लगता था बड़े, इतना सुंदर तरीके से गाते थे। लेकिन भले ही आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल है एकदम, लेकिन हृदय बहुत सरल। जब तक हृदय की सरलता नहीं होगी ना, हरे कृष्ण महामंत्र हृदय में उतरेगा नहीं। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो बहुत मधुर है, ये स्वीट, मधुरता को आस्वादन करने के लिए सरलता की आवश्यकता है। तो सरलता कैसे आएगी? विष्णु आचार्य का उपचार। हाँ पुनः पुनः ये बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ वो भजन सुना दिया है ये इट्स ए फिलॉसफी। तो जितना भजन गाओगे इससे आप कोई भी संप्रदाय में जाओ, खाली गौड़ी संप्रदाय में नहीं, कोई भी संप्रदाय में जाओ, कोई वैष्णव संप्रदाय में जाओ, एक ऐसे होंगे भजन होंगे। जैसे मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य का सिद्धांत देखो, कितना क्या सिद्धांत है, बहुत टफ, समझ नहीं सकता कोई, इतना तत्व के हिसाब से सब रहता है। लेकिन मध्व सन्यासी है, कोई भी प्रवचन देता है वो पहले भजन गाते हैं, पुरंदरदास भजन गाते हैं। हाँ आप दक्षिण मध्व शिव संप्रदाय में जाओ, कोई संप्रदाय में जाओ, ये भजन जो हैं आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ भजन, उसके अंदर जो से मैंने कहा दो चीज़ें, एक क्या है, एक जो है उनकी कृपा से हमारा हृदय सरल होता है, दूसरी क्या है उसमें कोई अपराध का बात है ही नहीं, इज नो क्वेश्चन इन ऑफेंस। भगवान का नाम में ऑफेंस का संभावना है, अपराध का संभावना है, ये विशेषता है। इसलिए हम पहले शुरू किए थे ब्रह्मचारी क्लास में, एक क्लास केवल भजन होगा, लेकिन पता नहीं वो गड़बड़ हो गया इसलिए शुरू किया था। आप क्यों नहीं करते हो भजन, भजन क्लास होना चाहिए, आप ऑर्गेनाइज करो। हाँ कम से कम 4,000, बहुत सारे गायब हो गए, मिलते नहीं हैं, कम से कम 4,000, 4,000 नामहट गीत, क्या बोलते हैं नामहट गीत ना, नामहट भजन, नामहट भजन, इतने तो मोटा किताब है, ये छोटे 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 भजन, बहुत सारे भजन। तो ये तो मुझे कहा गया था कि इस्कॉन का 7 उद्देश्य है, उसके विषय में थोड़ा सा लेने के लिए मैं सोचा बहुत ज़रूरी है, इसके लेना भी ज़रूरी है, छुट्टी के लिए। हाँ चलिए, 7 उद्देश्य मैं पढ़ता हूँ अंग्रेज़ी में, उसका महत्व तो समझाना प्रयास करता हूँ। सबसे पहला, टू सिस्टमैटिकली प्रोपगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज एंड टू एजुकेट ऑल पीपल इन द टेक्निक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इन ऑर्डर टू चेक द इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ एंड टू अचीव रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। इस्कॉन के 7 उद्देश्य, वैसे 7 तो बाद में आए, ओरिजिनली जो प्रभुपाद जी अमेरिका में बनाए थे ना, उसमें 7 से ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, ये उसको संक्षिप्त करके 7 बनाए गए, समझना चाहिए। तो सबसे पहला है कि कोई भी चीज़ होता है उसको उद्देश्य होता है कि नहीं। आप बोलोगे मैं ये बना रहा हूँ तो इसका उद्देश्य क्या है, आप बोलोगे मैं खरीद रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। अगर उद्देश्य के बिना अगर कुछ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं हो, तो मूर्ख है, पागल है। तो इस्कॉन को स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है, प्रभुपाद ने एक एक जो शब्द इस्तेमाल किया है बहुत बताया जाए तो एकदम वेदांत के बराबर है। सबसे पहले कहा कि प्रोपगेट स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार। सबसे पहला पर्पस क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान का। वृंदावन मंदिर का ओपनिंग की बात है, वृंदावन टेम्पल का ओपनिंग की बात, प्रभुपाद जी ने कहा ये मंदिर से प्रचार नहीं करोगे ये मंदिर गुड़ौन बनेगा, विग्रहों का गुड़ौन बनेगा। ये सब इस्तेमाल किया, गुड़ौन मतलब समझते ना, गुड़ौन हाँ, यहाँ का कोई काम का सामान नहीं रख दो, क्या पावरफुल स्टेटमेंट है। कोई और दिन नहीं, ओपनिंग के दिन, हाँ ओपनिंग के दिन मंदिर का ओपनिंग हो रहा है, सब लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इफ यू डोंट प्रीच, अगर आप प्रचार नहीं करोगे तो ये मंदिर नहीं क्या बन जाएगा, गुड़ा बन जाएगा, कोई काम का चीज़ नहीं उसको रख दिया ऐसा बन जाएगा। देखिए प्रभुपाद ने और एक शब्द इस्तेमाल किया है, प्रचार होना चाहिए लेकिन कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक कहा, क्या कहा, सिस्टमैटिक का अर्थ क्या है बताओ, सिस्टमैटिक अर्थ क्या है, चलो बस गीता है, हाँ गीता लो, गीता गीता ऊपर है ना, उससे ऊपर ही है, ऊपर हो बाजू, हो बाजू, हाँ पहला अध्याय का पहला पहला श्लोक का तात्पर्य पढ़ो, शुरुआत का लाइन, पहला अध्याय का पहला श्लोक का हाँ तात्पर्य का पहला लाइन पढ़िए।
भगवद्गीता एक बहु पठित ज्ञान है,
हाँ
जो गीता महात्मा के सार रूप में दिया हुआ है,
हाँ
इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संरक्षण करते हुए,
क्या शब्द विस्तार के प्रभुपाद जी ने कहीं पढ़ा आपने, इसको याद है भक्ति शास्त्र की है। क्या शब्द इस्तेमाल किया प्रभुपाद जी ने, इसका अर्थ क्या है? अभी संस्कृत जानते हो, थोड़ा सा बोलो, सम क्या अर्थ है, सम क्या अर्थ क्या है, वीक्षण का अर्थ क्या है, देखना, वीक्षा, विशेषण इच्छा, वीक्षा, विशेष रूप में देखना, वो भी सम्यक, सम्यक रूपेण विशेष रूपेण ईक्षति समवीक्षण, मतलब क्या है, सम्यक रूप में, पूर्ण रूप में और गहराई में, पूरा और गहराई से इसको देखना। अंग्रेजी में उसको स्क्रूटिनाइजिंगली बोला जाता है, स्क्रूटिनाइज, ठीक है हाँ, तो वही चीज़ है, सिस्टमैटिक मतलब स्क्रूटिनाइज। तो ऐसा नहीं कि ठीक है हमने कुछ प्रवचन दे दिया, आज कुछ दिया, अच्छा ठीक है वो हो गया, अभी औपचारिकता रूप में नहीं, सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिकली बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, सिस्टमैटिकली प्रोपगेट। पहले ऐसा था कि कोई ऐसा कुछ करता था, कोई ऐसा करता था, अभी जीबीसी में ऐसा हो रहा है कि एक मीटिंग में, चार दिन का मीटिंग किया सारा जीबीसी लोग, और सबको ग्रुप बनाए, ग्रुप बना के क्या दिया मालूम है, उनके हाथ में मैप दिया, मैप, पूरा विश्व का मैप होता है ना हाँ, वो दिया भारत वालों को, भारत का कमेटी को भारत का मैप दिया, उसको दिया, अब बोलो प्रचार कैसे कर रहा है, कैसे जोन बांटेगा, ऐसा कैसे बांटेगा, ऐसे बांटेगा, उसके बाद चार दिन मेरे दिमाग तो इसको सिस्टमैटिकली प्रोपगेट, ऐसा नहीं कि कहीं इधर कुछ कर दिया, इधर कुछ कर दिया, सिस्टमैटिकली प्रोपगेट टू द सोसाइटी एट लार्ज। ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही लोगों करेंगे, ब्राह्मणों को करेंगे, खाली गुजराती लोगों करेंगे, नहीं हमारा समाज वालों को करेंगे, नहीं, स्वामीनारायण लोगों की इसको प्रचार करता है वो, इसके लिए गुजराती है लेकिन, लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा था कि सिस्टमैटिक एजुकेट सोसाइटी एट लार्ज, सारे लोगों को, जितने भी जीव हैं उन लोगों को, टू एजुकेट ऑल पीपल इन टेक्निक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। दूसरा शब्द देखो आप, अब जब शब्द जब प्रचार करोगे, ऐसा नहीं कि ठीक है सुना के भेज दिया सबको, सुना के भेजना नहीं है, शिक्षा दे के भेजना नहीं है, एक होता है ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद उसको पकड़ के, नहीं ये करो, टेक्निक मतलब करना, जब करो ऐसे उठो, ऐसा बैठो, ऐसे नहाओ, ऐसे ऐसे कपड़ा पहनो, ऐसे बनाओ, ऐसा खाओ, ये सब टेक्निक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ है। हाँ, ऐसा नहीं कि ठीक है कुछ सिद्धांत की बातें चर्चा हुआ, वो आपके घर में गए, ये अपने कर गए, नहीं नहीं नहीं, ये पहला ही इसमें ऐसे पॉइंट्स आता है, ताकि ये करने के द्वारा ये करने के इम्बैलेंस, इम्बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण शब्द, इम्बैलेंस मतलब जो समाज में अस्त व्यस्तता है उसको उसको संतुलन में लाने के लिए, इम्बैलेंस इन स्पिरिचुअल इन सोसाइटी एट लार्ज। तो ये जो पहला पर्पस है ना, पहला अभी जो हमने चर्चा किया, यानी दूसरे शब्दों में दो चीज़ें कहा गया इसमें, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना और क्या करना है वो भी बोलना है। जैसे हमने कहा कि ज्ञान बताया, आध्यात्मिक ज्ञान, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, कृष्ण का जीवन स्वरूप है, कृष्ण नित्यदास बोल दिया, अर्थात सर निरा के चला गया, ऐसा नहीं करो, ये करो, इस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार धोती पहना जाता है, इस प्रकार तिलक पहना जाता है, तो टेक्निक सिखाना। तो पहला जो पर्पस है ये प्रचार का है। इस्कॉन में जितने भी सेवा है ना, कुछ भी सेवा हो, कुछ भी कार्य हो, हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, प्रचार का उद्देश्य करना चाहिए, प्रचार का उद्देश्य। फॉर एग्जांपल आप लोगों को खिचड़ी बांट रहे हो, ये जो संस्था है गुजरात में एक संस्था है, बहुत अनुदान करते हैं, राम बापा, सीताराम बापा, बापा सीताराम, बापा सीताराम, उनका वो भी अनुदान करते हैं, वो भी लोगों को खिलाते हैं, लेकिन खिलाने के पीछे क्या उद्देश्य है बताओ, खिलाना ही उद्देश्य है, लोगों को भीड़ भूख मिटाना उद्देश्य है, ये हमारा खिलाने के पीछे क्या उद्देश्य है, उनको शिक्षा देना,
शिक्षा ही एकमात्र उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पीछे शिक्षा उद्देश्य है। क्या श्लोक है? पूरा खूब होता ना, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदिव्य। तो ये शिक्षा ही उद्देश्य है। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइफ एवर बनाने जाते हो, क्या उद्देश्य क्या है? पैसा लेके आ जाना ना, उसको शिक्षा देना। वो तो वो आप बोले मैं आपको भक्त बनाने, बोले मैं तो भक्त हूँ। ये बड़ा समस्या है और इस्कॉन में, ये बहुत जगह में बताता हूँ इस बात को। जब कोई चीज़ सिखाने जाओ ना, प्रभु ये तो हम तो भक्त है ना, उनके अनुसार क्या है, जो अभक्त है उनको शिक्षा दो, जो भक्त हो गया तो शिक्षा जरूरत नहीं है। आश्रित पे भक्त को ही शिक्षा चाहिए। शिक्षा जो है भक्त को ही चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, प्रभु ये गीता किसके लिए है? बांटने के लिए ना। प्रभु जी आप पढ़ो, हम तो भक्त हो गए ना प्रभु जी, क्या जरूरत है? अगर सबसे बड़ा अगर कुछ मोह है हमको, वो क्या मोह है मालूम है? मैं भक्त हूँ, दिस इज बिगेस्ट इल्यूजन, दिस इज बिगेस्ट इल्यूजन। अभी मैं भक्त बन रहा हूँ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डिवोशन, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डिवोटी। कभी भी गलती से मत सोचना मैं भक्त हूँ, क्योंकि जैसे भक्त में सोचोगे ना, पढ़ाई बंद हो जाएगा। लोग बोलते हैं प्रभु जी अब पढ़ने को नहीं होता है, तो क्यों होता है? नहीं होता है, इसी यही कारण है, क्योंकि मैं सोचता हूँ क्या, मैं क्या सोचता हूँ, हाँ हो गया, हो गया है। हो गया, यही समस्या
है। भक्तों को पैसा भी नहीं देता सेवा के लिए,
हाँ
क्यों, हम तो भक्तों भक्त हो गया ना।
हाँ अभी हाँ भक्त हो गया, अभी क्या देना है कभी? भक्त हो गया ना, चाहे कोई भी हो, एनीथिंग, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, क्या उद्देश्य है? जस्ट प्रीच, लोगों को शिक्षा देना। आप शिक्षा दोगे तो वो धीरे धीरे से भक्ति मार्ग को स्वीकार करेगा, है कि नहीं? हम लोग किसी को भक्त नहीं बनाते, क्योंकि सारे जीव ऐसे ही भक्त हैं, लेकिन भूल गए। हम उसको याद दिलाएंगे, शिक्षा मतलब क्या, याद दिलाना, क्योंकि उनको मालूम नहीं है भगवान के सेवक है, कृष्ण के सेवक है। तो जो भी कार्य होता है, नगर संकीर्तन होता है, कुकिंग होता है, डेडिकेशन, कुछ भी एनीथिंग, डेडी वर्शिप होता है, इन सब के पीछे एकमात्र उद्देश्य क्या है? सब शिक्षा देना। हाँ कुछ लोग कहते क्या प्रभु जी, जो प्रचार करने वाला ये प्रीचर है, ये मैनेजर है, ये प्रीचिंग ये मैनेजमेंट है, एक्चुअली दोनों एक ही है, वो अलग चीज़ नहीं है। हाँ मैंने एक बार कही क्या था, अगर जयपुर गया था ना, तो उधर के कोई वाइस प्रेसिडेंट था, तो जी हम मैनेजर हैं आप प्रीचर है, ऐसा बोला। तो मैंने, आप क्या मैनेज करते हो? देख रहे देखने में मैंने ना, आप प्रीचिंग को मैनेज करते हो ना? हाँ 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 प्रभु जी, आप प्रीचिंग को मैनेज करते हो। ये दो चीज़ अलग नहीं है, है कि नहीं? मान लो आप कुकिंग करोगे, खाने वाले नहीं तो क्या कुकिंग है? कुकिंग किसके लिए कर रहे हो बताओ? खाने को लेकर बना रहे हो ना, है कि नहीं? अगर मान लो कहीं खाने वाला नहीं है, तुम्हारा कुकिंग क्या फायदा, कुछ फायदा है? तो वी आर कुकिंग फॉर, हम लोग कुकिंग किसके लिए करते हैं? खाने वाले। ऐसी प्रकार हम लोग मैनेजमेंट किसके लिए करते हैं? प्रचार के लिए। तो ये दो अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के बिना प्रचार नहीं होगा, और प्रचार के बिना मैनेजमेंट कोई कोई काम का ही नहीं है, कोई काम का नहीं है। वट इज़ द यूज ऑफ मैनेजमेंट विदाउट प्रीचिंग? वो बहुत सारे चल ही रहे हैं ना, बहुत बड़ा पूरा देश चल रहा है, देश का मैनेजमेंट हो रहा है लेकिन प्रचार नहीं हो रहा है, वट इज़ द यूज़? ये दोनों एक ही चीज़ है, मैनेजमेंट, आई मैनेज प्रीचिंग, एवरीबडी मैनेजेस प्रीचिंग, मतलब मैं प्रचार को मैनेज कर रहा हूँ। मैनेजमेंट अलग नहीं है और प्रचार अलग नहीं है, दोनों एक्चुअली एक ही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा,
भक्ति टू प्रोपगेट ए कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा गॉड एज इट इज रिवील्ड इन द ग्रेट स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया भगवद गीता एंड श्रीमद भागवतम. हाँ अभी शिक्षा आपने दिया तो ये आध्यात्मिक शिक्षा का दिया किसके आधार के ऊपर दे रहे हो? मान लो कोई भी चीज़ पढ़ाते हो तो उसको कुछ आधार होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो तुरंत क्या कौन से बुक से पढ़ाते हो? बात तो आई वही आएगी ना, है ना? तो तब प्रभुपाद देखते हैं कि हम पढ़ाते लोगों को क्या पढ़ाते हैं? गीता और भागवत के उधर दो ग्रंथ, गीता भागवत. तो कभी भी आप कोई प्रेस रिपोर्टर मिलता है ना, हाँ तो पूछते हो आप क्या करते हो, आपको यही बोलना है गीता भागवत के ऊपर आधारित होकर हम शिक्षा देते हैं. बस एक लाइन में सब कुछ आ गया इसका विषय में, एक लाइन में सब कुछ आ गया. गीता भागवत के आधार पे हम शिक्षा देते हैं. तो बहुत सारे लोग गीता भागवत का शिक्षा दे रहे हैं, फिर उनमें हमें अंतर क्या है? बहुत लोग गीता भागवत का शिक्षा दे रहे हैं लेकिन उससे वो लोग कृष्ण भक्त नहीं बन रहे. तो दूसरा पॉइंट ये है, गीता भागवत के ऊपर शिक्षा दे के हम क्या करते हैं? उनको कृष्ण भावना भावित बना रहे हैं. इधर देखिए कितना टेक्निकल है. कोई भी पूछ सकता है कि आप गीता भागवत पढ़ते हैं? वो भी पढ़ाता है, ये भी पढ़ता, सब एक ही है. नहीं 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 नहीं, वो गीता भागवत पढ़ाते हैं तो कृष्ण भक्त नहीं बनाते, हम बनाते हैं. ए सेकेंड पर्पस है. तीसरा, थर्ड पर्पस, टू ब्रिंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर विथ ईच अदर एंड नियर टू कृष्णा द प्राइम एंटिटी दस डेवलपिंग द आइडिया विद इन द मेंबर्स एंड ह्यूमैनिटी टू लॉज दैट ईच सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्वालिटी ऑफ गॉड हेड. बहुत है. अभी देखो कितना प्रोग्रेस है. पहला क्या हमने पढ़ाया, दूसरा किसके आधार पर पढ़ाया? गीता भागवत के आधार पढ़ाया. किसके लिए बनाया, किसके लिए पढ़ाया? भक्त बनाने, कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए. अभी बनाया कृष्ण भावना भावित बनाया, 10 लोगों को बनाया, 20 लोगों को, 25 लोगों को बनाया. बना के क्या करोगे? तीसरा पॉइंट में कहा गया उन सबको साथ में लाना, इन सबको साथ में लाना, इन सबको साथ में लाना. क्यों साथ में लाना? क्योंकि एक दूसरे के साथ में लाने से वो कृष्ण के साथ रहेंगे, कृष्ण के नज़दीक रहेंगे. दो भक्त नज़दीक आते हैं, जितना नज़दीक आते हैं उतना कृष्ण के नज़दीक जाते हैं. बहुत सुंदर फिलासफी प्रभुपाद लिखते हैं, जितना भक्ति करीब हो गया ना उतना कृष्ण करीब हो जाओगे, जितना भक्त से दूर हो गए उतना कृष्ण भी दूर, जितना भक्तों के साथ जितना घनिष्ठ संबंध रहता है उतना कृष्ण के नज़दीक, जितना भक्तों के नज़दीक उतना कृष्ण के नज़दीक. तो तीसरा पॉइंट में ये बात कहा गया कि सबको एकत्रित करना, इसलिए इस संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी. सोसाइटी मतलब क्या है? सब साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक उधर रहा एक उधर रहा, इसको छोटी सोसाइटी कहा जाता है. हाँ सबको साथ में लाना. नियर टू कृष्णा, ताकि सबको समझ में आए कि हम कौन हैं, कृष्ण के अंश. चौथा, टू टीच एंड एनकरेज अ संकीर्तन मूवमेंट कांग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ गॉड एज रिवील इन द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. जब सब लोग साथ में आए, साथ में करेंगे क्या? संकीर्तन. देखिए संकीर्तन मतलब ये नहीं कि सब साथ में आए और कीर्तन कर रहे हैं. संकीर्तन का परिभाषा भक्तिनाथ ठाकुर के अनुसार, जब लोग सतलो साथ में बैठ के भगवान का नाम संकीर्तन, रूप संकीर्तन, गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, ये सब संकीर्तन ही है. हेलो भागवतम क्लास में बैठे, वो क्या संकीर्तन है कि नहीं? वो भी संकीर्तन है. और मान लो कि 10 भक्त बैठ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी संकीर्तन है. 10 भक्त लोग बैठ के मंदिर बनाने के विचार कर रहे हैं, वो भी संकीर्तन है. सब जब भक्त लोग साथ में आएंगे तो क्या होगा? इधर चौथे पॉइंट में क्या कहा गया है? महाप्रभु
का शिक्षाओं का पालन हो पाएगा। पहले लोग भक्ति करते थे, गीता भागवत पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे, वो अकेले गुफा में बैठते थे, है कि नहीं। अभी क्या कहा गया है, सब साथ में। तो पहला पॉइंट क्या बताओ, शिक्षा देना। दूसरा पॉइंट क्या है, गीता भागवत के ऊपर शिक्षा देना ताकि वो भक्त बने। तीसरा पॉइंट क्या है, सबको साथ में लाना। साथ में लाने से क्या हुआ, कृष्ण के नज़दीक में। चौथा पॉइंट क्या है, महाप्रभु का जो आंदोलन है संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करना, उस पर भाग लेना हुआ, एज टीचिंग बाय श्री चैतन्य महाप्रभु। अब ये सब होने के द्वारा तो सब एकत्रित हुए, सब लोग साथ में कीर्तन कर रहे हैं, सबके साथ में बहुत सारा सेवा हो रहा है। लेकिन एकत्रित होंगे तो कोई जगह होना चाहिए ना, तो जगह का निर्माण होना चाहिए कि नहीं। तो पांचवा पॉइंट सुनो, टू एरेक्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज ए होली प्लेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम डेडिकेटेड टू द पर्सनालिटी ऑफ कृष्णा। सरल भाषा, मंदिर बनाना, भगवान की लीला स्थली है। प्रभुपाद लिखते हैं कि मंदिर जो है भगवान की लीला स्थली है। टू एरेक्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी इस संस्था के जो सदस्य हैं, एंड फॉर द सोसाइटी एट लार्ज, यानी जो फुल टाइम भक्त है, जो कांग्रीगेशन है, जो अन्य लोगों के लिए क्या करना, ए होली प्लेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स ऑफ कृष्णा डेडिकेटेड टू द पर्सनैलिटी ऑफ कृष्णा, एक होली प्लेस। प्रभुपाद जी कहते थे ये जो मंदिर जो है वो धाम है। प्रभुपाद के टाइम में था, कहता वो हरे कृष्णा धाम, लिखते ना हरे कृष्णा धाम, इट्स अ होली प्लेस। ये कौन सा पॉइंट हुआ, पॉइंट तो मंदिरें बन गए अभी। अभी वापस बताओ, पहला पॉइंट क्या था, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना। दूसरा पॉइंट क्या बताओ, गीता भागवत के ऊपर शिक्षा दे रहा हाँ ताकि वो भक्त बने। तीसरा पॉइंट क्या है, एकत्रित कर रहा, जितने एकत्र नजदीक में आएंगे उतना वो कृष्ण के नजदीक में जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या है, संकीर्तन करना जितने महाप्रभु शिक्षा के अनुसार, और उसके बाद मंदिर बनाना। तो मंदिर बन गए भी, हाँ। टू ब्रिंग द मेंबर्स क्लोजर टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग ए सिंपलर लाइफ, मोर नेचुरल वे ऑफ लाइफ, with a view towards achieving the aforementioned purpose, to publish and distribute periodical magazines, books and other writings. तो कितना पॉइंट हो गया अभी तक, फिफ्थ हुआ, हाँ पाँच हो गया। छठा, छठा क्या है, सारे भक्त अभी मंदिर में आए, मंदिर से जुड़ने लगे, धीरे धीरे से उनको और नज़दीक लाना और उनको सिखाना। क्या सिखाना, सरल जीवन, सरल जीवन ऊंच विचार, ये सिखाना। अभी ये बाकी है, बताऊंगा मैं बताऊंगा। ये है फार्म कम्युनिटी, क्या ये फार्म कम्युनिटी। अब यार अपना मंदिर बन गया, हाँ मंदिर बनने का क्या, अभी पांच एकड़ जमीन मिला ना, मालूम है आपको, पांच एकड़ जमीन मिला कर उनको बोईसर के पास में और गौशाला। शुरुआत है सिंपल लिविंग का, शुरुआत गौशाला से होता है, बाद में धीरे धीरे से जो विलेज लाइफ जो है, जो सरल जीवन है, उसको सिखाना, ताकि हमारा ज़्यादा भजन के लिए ज़्यादा समय मिले। शहर में रहता है जो गृहस्थ है, वो अपना घर संभालने के लिए वो कितना घंटा काम करना पड़ता है, सुबह सात साढ़े सात आठ बजे जाता है, रात को आठ नौ बजे आता है, तो कुछ टाइम है जब करने के लिए बराबर, ट्रेन में जब होता है। 70% दीक्षित कांग्रीगेशन का जपा कहाँ होता है मालूम है, 70% डिक्की लोग, कम से कम आधा तो ट्रेन में होता ही है,
वो भी सारा मेले का प्रॉब्लम,
जो भी वाटर इट होता है, वेरी वेरी डिफिकल्ट।
तो इसलिए अगर मान लो कि उसका सिंपल सरल जीवन है, टू बी मोर क्लोज टू सिंपल वे नाउ आखिरी वाला विद अ व्यू टू टुवर्ड्स अचीविंग द एफोरमेंशन पर्पसेस, पहले के जो छह चीज़ें हैं उसको प्राप्त करने के लिए, उसको स्थापना करने के लिए, टू पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट पीरियोडिकल्स मैगजीन बुक्स एंड मिटर्स, क्या करना है, ग्रंथों का मुद्रण करना और उसको, यानी जितना ग्रंथों का मुद्रण होगा, जितना ग्रंथों का वितरण होगा तो बाकी शेष जो हो जाएगा, लोगों के विश्वास का जितना ग्रंथों का होता है। आपका प्रश्न सिंपल लिविंग है कि नहीं, सिंपल लिविंग मतलब कोई भी चीज़ आप लेने से पहले ये सोचना चाहिए क्या है मेरे लिए ज़रूरी है क्या। जो इस प्रकार का विचार रखता है वो सरल है, और कोई चीज़ लेता है और ज़रूरत नहीं होने पर भी लेता है वो उसका लिविंग कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमको ज़रूरत नहीं है उसके बिना भी मैं जी सकता हूँ, उसके बिना भी मैं भजन कर सकता हूँ, लेकिन मन में ऐसा रहता है ये चाहिए, इसके बिना कैसे होगा। जैसे बच्चा है ना, माँ अच्छी दूध पिला रही है, सब कुछ एकदम बिल्कुल एकदम बढ़िया कर रहा है, लेकिन वो प्लास्टिक का टुकड़ा हो रहा था खिलौना, वो नहीं मिलेगा तो रोना शुरू करता, नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, उसका बचपना है। अस्तित्व में हमको दो ही चीज़ें चाहिए, क्या मालूम है, एक जपमाला चाहिए, एक गीता चाहिए, बस। दो ही चीज़ें चाहिए, बाकी सब जो चीज़ें आपने आप आता ही जाता है। रिक्वायर ओनली टू थिंग्स इन लाइफ, दैट इज कॉल्ड सिंपल लिविंग आई थिंक, एक जपमाला और कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी दुर्बुद्धि है इसको आवश्यक बना के, जैसे बच्चा जो है वो सोचता आवश्यक है, एक गुड़िया के बिना रह सकता मैं, एक खिलौना के बिना नहीं रह सकता, तो इसके बिना नहीं रह सकता, इसके बिना जी नहीं सकता, ऐसा मन मन कहता है, मन का खेल है, ये मेंटल प्रॉब्लम है ये। सो दीज आर सेवन पर्पसेस ऑफ इस्कॉन, तो जो इस्कॉन में जो भी कार्य करते हो तो ये सब हमेशा ध्यान, ये किसके, ये सात उद्देश्यों में से होना चाहिए। ये सात उद्देश्यों का सार निकालते हुए भक्तिराज को महाराज ने चार बातें बताई थी, बहुत सुंदर है। सबसे पहला संकीर्तन मूवमेंट, हरि नाम संकीर्तन किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, करते 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 क्या हुआ, लोग जो हैं पूछने लगे, आप लोग कौन हो, कहाँ से आते हो, आप कोई मंदिर है क्या। तब आवश्यकता पड़ी हमारे संस्था को मंदिरों की, तब मंदिरों का टेंपल कंस्ट्रक्शन मूवमेंट शुरू हुआ। सबसे पहला क्या हुआ, संकीर्तन मूवमेंट, बाद में क्या हुआ, टेंपल कंस्ट्रक्शन। जब टेंपल कंस्ट्रक्शन मूवमेंट हुआ लोग मंदिर में आने लगे, पहले तो खाली देखने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, बाद में आते रहे सेवा करने के लिए आना शुरू कर दिया। अभी सेवा करना है तो करते करते जप करना शुरू कर दिया, तो बहुत सीरियसली करना शुरू कर दिया, उसे भी मंगल आरती में आना शुरू कर दिया। तब तो बोला ठीक है, दीक्षा इनिशिएशन मूवमेंट क्या शुरू हुआ, इनिशिएशन मूवमेंट दीक्षा का मूवमेंट चालू हुआ। अभी करते 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 दीक्षा दे दिया, 500 600 कांग्रीगेशन हो गया, दीक्षा हो गया, सब लोग प्रभु जी जब बराबर नहीं होता है, पढ़ाई बराबर नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, सब लोग वो एक एक प्रॉब्लम बोलना शुरू किया। तब चौथा मूवमेंट शुरू होगा, कौन सा, वर्णाश्रम मूवमेंट, क्या है वो, वर्णाश्रम मूवमेंट
मैनेजमेंट,
ना मैनेजमेंट नहीं, वर्णाश्रम, वर्णाश्रम मूवमेंट मतलब आपकी रोजी रोटी के लिए रहने के लिए जितना हो सके उतना कम मेहनत करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन के लिए देना, ये शहर में असंभव।
छोटे शहर छोटे गांव होते हैं ना उधर ही संभव, उसको वर्णाश्रम मूवमेंट शुरू किया। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने जो भी करना कह दी कर दिया है, आई हैव लेफ्ट 50% यू, 50% जो है आपको छोड़ा है मैंने। आप देखो कहीं नए जगह मंदिर शुरू करना चाहते हो, सबसे पहले क्या करोगे, नगर संकीर्तन करोगे, बुद्धि शिक्षण करोगे, सत्संग प्रोग्राम करोगे, एक जगह करके बाद में उसे लात पकाए दूसरी जगह जाओगे, जैसे लात करते 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 क्या होगा, कुछ लोग थोड़ा प्रभावित होंगे, तो लोगों ने वो जी हमको एक मंदिर चाहिए, तो तब क्या होगा मंदिर की, अगर मान लो नया जगह जाके मंदिर बनाना शुरू किया भक्त नहीं बनाया तो क्या होगा, मंदिर संभालने में हालत खराब हो जाएगा लोगों को। तो हमारा मंदिर अच्छा है क्यों, पहले क्या बनाया हमने, खाली संकीर्तन किया सत्संग किया बुद्धि शिक्षण किया, करते 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 क्या हुआ बहुत सारे भक्त बने, तब मंदिर है कि नहीं, मंदिर बनने के और ज्यादा बनेंगे और ज्यादा लोगों को सेवा देंगे तो दीक्षा लेंगे और ज्यादा दीक्षा लेंगे, है कि नहीं, तो दीक्षा इनिशिएशन मूवमेंट शुरू हुआ, उसके बाद वर्णाश्रम मूवमेंट, वर्णाश्रम मूवमेंट सब को एक 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 शिक्षा देना है, सरल जीवन बिताओ भी ऐसा, इज द फोर मूवमेंट्स। कहीं भी कोई भी जगह जो है शुरुआत में गोपीनाथ वाले ने क्या किया था, वही किया था ना, प्रचार किया, मंदिर बनाया, इतने भक्तों को भक्त बनाए, दीक्षा बनाया, अरे वाड़ा फार्म खोला है कि वर्णाश्रम मूवमेंट, जू का भी कैसे हुआ भाई, क्या हुआ तलासरी फार्म, हमारा छोटा सा 5 एकड़ मिला है, अभी 50 चाहिए हमको। वो तो थोड़ा रिटी टाइप बनाने लग गया, ये एनी क्वेश्चन कोई प्रश्न, कुछ वो भी भजन है, वो भी संस्कृत में बंगला में ऐसा कुछ उड़िया में, कुंती महारानी का है, हम लोग अष्टकम गाते हैं ना, सतीश अष्टकम गाते हैं, रजलासु अष्टकम गाते हैं, जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, ये सब भक्तों ने किया ना, हाँ क्यों नहीं, अरे क्यों मुझे नहीं लिखते क्या, द्वादश स्तोत्र क्या है, स्तोत्र है वो, मध्वाचार्य ने लिखा, बाद उडुपी कृष्ण को लेने गए थे, 5 उच्चारण किया, लेके आने के समय 7 उच्चारण किया, वजन है वो, प्रणयाम वासुदेव, द्वादश स्तोत्र मध्वाचार्य का है, 12 है द्वादश स्तोत्र, लिया है आपको भेजेंगे भी, असिस्टेंट डायरेक्टर आप, तो आप गाय के साथ रहोगे आपको पित्त कम होगा, पित्त कम होगा, व्याध बैलेंस होगा, सब बराबर हो जाएगा, आस्थमा चला जाएगा, सब चले जाएगा, मंदिर के पास जाएंगे, अहोबिलम तिरुपति लेके जाएंगे, अहोबिलम तिरुपति गए, अहोबिलम कौन कौन गए, 1, 2, 3 बस, जनवरी फरवरी में लेके जाएंगे, अहोबिलम नारद सिंह।